मुक्ति जो है उसको गाय भाग में मिल जाती है। यही से हे जगदीश भक्त सुगम तब तब जीव कह अपरम नहीं कछु देश भक्ति बिना हे मंद सुत जो नर चतुर हो जग कोई तब कटाक्ष मान मन सोई कब कटाक्ष करी हूँ जगुनाथा कृपा। ये वंश मित सुन हरि गाथा निज अर्जित जो कर्म पुराने भल अरुमंद किए दस जाने तस फल लहे करे सो भोगा अनासक्त भोगे दिन सोगा अति कलेश तप आदि त्यागी तब पद संतत भय अनुरागी। एवं विधि जो जीवत है प्राणी भय मुक्ति भागी ते जाने। ये मुक्ति के भागी तो अपने आप हो गए। तो तीन चीज बड़ी सुंदर बात ब्रह्मा जी ने कही है, तीन चीज याद रखने की। दुख तो छूट जाएंगे आज ही, भगवान की कृपा पर विश्वास हो जाए और उस कृपा को हर अवस्था में हर परिस्थिति में अनुभव किया जाए। दुख के दावा नल में भी और सुख के परम शीतल सरोवर में भी डूब कर वो केवल उस कृपा का अनुभव करे। दोनों में समान सुख दुख जो आवे उन्हें बिना किसी प्रकार के उद्वेग के निर्विकार चित्त से ग्रहण कर ले। ये भगवान की कृपा आई और अपने तन मन को भगवान के समर्पण रखे। हाथ से जो काम करे भगवत सेवा का भाव, मन से भगवान का चिंतन और वाणी से भगवान का नाम गुणगान। इस प्रकार जो अपने आप को भगवान के चरणों में दबाए रखता है भगवान उसके हो जाते। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैं तो बस इससे आगे की बात तो जानता नहीं। ये बात भी आज स्फुरित हो गई आपके इस भक्तवत्सल चरित्र को देख करके कि आपकी कृपा पर जो निर्भर करते हैं उनको कहां दुख होता है, इन पर कहां विपत्ति आती है, इनको शुक्र के लिए भय के लिए स्थान कहां रहता है। देखो ना ये निर्भय भी चल रहे हैं ये बच्चे, मानो कोई भय इनको छू ही नहीं गया। ये सब आपकी कृपा का फल है। तो बस हम तो यही चाहते हैं कि आपकी कृपा पर विश्वास हो जाए, जो कर्म बस भोग प्राप्त हो उनको निर्विकार चित्त से भोग लिया जाए और आपकी सेवा में अपने आप को अर्पण कर दिया जाए। हरिओम तत्सत।
श्री गोविंदम प्रपद्ये अहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे पुङ्गमरविन्दबलायताक्षम् इन्दुशङ्खदशनम् शिशुरोपदेशम् इन्दुरादिदेवमनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनमसुदेवसुरोलवरवरुणी चन्द्रकोदभाषिकरणम् विकसितमलिनाशियम् विस्फुरन्मन्दराशिम् कनकरुचिरुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमति निखिल सारं नौ गोपी कुमारं वंशीभूषितकरान्नवनीरजाभात् पीताम्बरादौनगोपराधवष्ठात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तस्मिन्नार्यमनन्तराद्ये परात्मै त्वयीयति मायुमायिनी मायां वितत्ये क्षिपणात्मवैभवम् ಯಹಂ ತಮೋಮದಹಂ ಕೃತ್ವಾಗ್ನಿರಾರ್ಭೂತಂ ವೇಷ್ಟಿತಾನಂದಭಟ ಸತ್ತದುತಸ್ಥಿತಾಯಃ ವೇದ್ಯದ್ವಿಧಾದಿಗಣಿತಾಂದಪರಾನುಚರ್ಯಾ ವಾತಾಧ್ವರೋಮವಿವರಸ್ಯ ಯಜತೇ ಮಹಿತ್ವಂ ಉತ್ಕ್ಷೇಪಣಂ ಗರ್ಭಗತಸ್ಯ ಪಾದಯೋಃ ಕಿಂ ಕಲ್ಪತೇ ಮಾತುಲಧೂಕ್ಷಜಾಗಸೆ ಕಿಮಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ವ್ಯಪದೇಶ ಭೂಷಿತಂ ತವಾಸ್ತಿ ಕುಕ್ಷೇ ಕಿಯದಪ್ಯಂತಃ ಜಗತ್ರಯಾಂತೋ ದರ್ಶನ ಪ್ರಭುದೇ ನಾರಾಯಣಸ್ಯೋದರನಾಭಿನಾಲಾತ್ ಬಿಲರ್ಗತೋ ಜಸ್ತುತಿ ವಾಯ್ನವೈಮೃಷಾ ಕಿಂತು ಈಶ್ವರತ್ವಂ ನ ವಿಲರ್ಗತೋಸಿ ನಾರಾಯಣಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮಾತ್ಮಾಸು ದೀಶಾಖಿಲೋಕಸಾಕ್ಷಿ ನಾರಾಯಣಂ ನ ಭೂಜಲಾಯನಾತ್ ತಚ್ಚಾಪಿ ಸತ್ಯಂ ನ ತವೈವ ನವಾ ತಚ್ಚೇಜಲಸ್ಥಂ ತವ ಸಜ್ಜಗದ್ವಪುಃ ಕಿಂ ಹೇನ ದುಷ್ಟಂ ಭವಂಸ್ತದೈವ ಕಿಂವಾ ಸುದುಷ್ಟಂ ಹೃದಿ ಮೇ ತದೈವ ಕಿನ್ನೋ ಸಪದಿಯೇವ ಪುನರ್ವದರ್ಶಿ ಅತ್ವೈವ ಮಾಯಾಧಮಾವತಾರೇ ಯಶ್ಚ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಯುಗವಿಸ್ಮೃತಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ತು ಚಾಂತರ್ಜಠವೇ ಜನನ್ಯಾ ಮಾಯಾ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರಕಟೀಕೃತಂ ತೇ ಯಕ್ಷ ಕುಕ್ಷಾರಿದಂ ಸರ್ವಂ ಸಾತ್ಮಂ ಭಾತಿ ಯಥಾ ತಥಾ ತತ್ವಯ್ಯಪಿ ಯತತ್ ಸರ್ವಂ ಕಿಮಿದಂ ಮಾಯಾಗಮ ಅಧ್ಯೈವ ಸುಜತೇ ಸರ್ವತಂ ಮನ್ಮತೇ ಮಾಯಾತ್ಮಾದರ್ಶಿತೇ ನೀಕೋಸಿ ತತ್ವಂ ತತೋ ವೇಷು ಜ್ವತ್ಸಾ ಸಮಸ್ತಾಯತಿ ತಾವಂತೋಷಿ ಚತುರ್ಭುಜಾಸದಿರೈ ಸಾಕಂ ಮಯೋಪಾಸಿತಾಸ್ತಾವಂತೇ ಜಗಂತಿ ಭೂತಗಮಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಂ ಶಿಷ್ಯತೆ
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜೀ ಸ್ತವನ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ ಪಹಲೆ ಉನ್ಹೋನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜೀನೆ ಬಂಗಾಲ ಮಂಡಲ್ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ್ ಚರಣ ಶರಣಾಗತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಜಗತ್ ಮೇ ಪ್ರಗಟ ಹೋನೆ ಪರ್ ಭೀ ಅಜ್ಞೇಯ ಹೈ ಉಸೆ ಜಾನಾ ನಹೀ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ನಾಮ ರೂಪ ಹೂ ಲೀಲಾ ಆದಿ ಕಾ ಅವಲಂಬನ್ ಕರ್ನೆ ಪರ್ ಉನ್ಕೆ ಕಥಾ ಅರಸ ಕಾ ಆಸ್ವಾದನ ಲೇನೆ ಪರ್ ಭಗವಾನ್ ವಶ ಮೇ ಹೋ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ಬಿನಾ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಸರ್ವಥಾ ಹೀನ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಸಗುಣ ಔರ್ ನಿರ್ಗುಣ ದೋನೋ ಹೀ ದೋನೋ ಕಾ ಜಾನನಾ ಬಡಾ ಕಠಿಣ ಹೈ ದುರ್ಲಭ ಹೈ ಪರಂತು ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ವರೂಪ ಕಾ ಕುಛ ದಿವ್ಯತ್ವ ಹೈ ಭೀ ಜಾನಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಪರ ಸಗುಣ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ತೋ ಸರ್ವಥಾ ಅಜ್ಞೇಯ ಹೈ ಕೃಪಾ ಬಿನಾ ನಹೀ ಜಾನಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಔರ್ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕೃಪಾ ಪರ್ ಹೀ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಅಪ್ನೇ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ ದೇನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಜೋ ಕುಛ ಭೀ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂಸಾರ ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೂಂ ಬಿನಾ ಕಿಸಿ ವಿಕಾರ ಕೆ ಸಹನ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜೀ ನೇ ಅಬ್ ತಕ್ ಕಹಾ ಅಬ್ ಏಕ್ ಚೀಜ್ ವೋ ಐಸಿ ಹೈ
कि जब लोग भगवान के प्रति मन में भक्ति का भाव उदय होता है तो स्वाभाविक एक दैन्य आ जाता है, जहां अपने अंदर विचार की प्रचुरता मालूम होती है वहां तो अभिमान आता है। मैं सोच सकता हूं, मैं विचार सकता हूं, मेरा विवेक मेरा ज्ञान बहुत ऊंचा है इत्यादि रूप से जब विचार का अभिमान मन में आता है तब उसमें दैन्य नहीं आता। और जहां भगवान के चरणों में प्रणति होती है तो वहां दैन्य आ जाता है। ये स्वभाव है, माने भक्ति रस से जब सिक्त हो जाता है मनुष्य का मन तो बुद्धि में इंद्रियों में सब में स्वाभाविक मान का अभाव हो जाता है और सच्चे दैन्य का संचार हो जाता है। दैन्य माने दंभ से किसी के सामने नत हो जाना, ये दैन्य नहीं है। स्वाभाविक ही अपने अंदर साधनहीनता का भान होना, अपनी असमर्थता का, अपनी अशक्ति का ठीक ठीक अनुभव होना, ये दैन्य। नारद जी ने कहा भगवान को दैन्य प्रिय, दैन्य प्रियत्वाच अभिमान द्वेषत्वात्। ये कहा कि भगवान जो है इनमें राग द्वेष नहीं है, परंतु स्वाभाविक भगवान के इस प्रकार के लीलाचरण होते हैं जहां अभिमान देखते हैं वहां मानो द्वेष की लीला करते हैं भगवान, अभिमान का चूर्ण करने के लिए। और जहां दैन्य देखते हैं वहां भगवान प्रेम की लीला करते हैं, दीन को अपना लेते हैं। तो जब भगवान की कृपा पर दृष्टि गई ब्रह्मा जी की तो स्वाभाविक ही उनके अंदर दैन्य आ गया, मान का अभाव हो गया। दूसरी बात, मनु ब्रह्मा जी इतने नत हैं भगवान के और भगवान के आज्ञानुसार ही ब्रह्मा जी के जीवन के सारे कार्य होते हैं। सृष्टि का उत्पन्न करना ही भगवान की आज्ञा से ही। तो कहीं भगवान ये न कह दें कि भाई तुम तो मेरे भक्त हो ही और तुम इस महासंपत्ति के दाय भाग के अधिकारी हो, तो ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आया तो ब्रह्मा जी इस भावना से व्याकुल हो गए कि मेरे में तो भक्ति कहाँ है। साथ ही उन्हें अपराध की स्मृति हो आई। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये तो मुक्ति पहले से दाय भाग, ये मुक्ति की प्राप्ति या भगवत चरण सेवा अधिकार की प्राप्ति ये तब होती है जब भगवत चरणारविंद के शरणागत हुआ जाता है, किंतु जो भक्तापराधी है, जिसने भक्त का अपराध किया है, जिसने भक्त का बिछोड़ भगवान से करवा दिया, इस प्रकार का अपराधी भगवान की शरणागति में प्रवृत्ति कैसे होगा। और भी दैन्य मन में आया कि मेरे समान अपराधी कौन, दुर्वाज कुमार के जो लीला पार्षद रूप बालक और गोवत्स, उनको मैंने माया मुग्ध किया, स्थानांतरित कर दिया, हटाए दिया वहां से, तो ये अपार करुणा समुद्र भगवान जो हैं श्री नंदनंदन, ये यदि मेरे अपराधों को क्षमा कर दें तो भले ही मैं इनके चरणों की शरण प्राप्त कर सकूं, नहीं तो मेरी कोई गति नहीं। तो इस बात को सोचकर ब्रह्मा जी अपने महान अपराध के लिए पहले भगवान से क्षमा याचना करने लगे। तो किसी से भी जब कोई सच्चे हृदय से क्षमा मांगता है तो पहले अपना अपराध स्वीकार करता है। ये बड़ा सुंदर तरीका है। किसी को भी अनुकूल बनाना हो और अपना अपराध क्षमा करवाना हो तो पहले अपने अपराध को स्वीकार कर ले और मुक्त हृदय से अपने को दोषी मान ले। युक्तिवाद नहीं, बहानेबाजी नहीं। मनुष्य बहुत दफे इस प्रकार की चेष्टा करता है अपराधी होने पर भी युक्तियों के द्वारा, भाई ऐसा हमने यूं किया, इस कारण से किया, हम तो करना नहीं चाहते थे पर हो गया, परिस्थिति ऐसी आ गई, ये दूसरे दूसरे यूं उनको खिजाने लगे तब फिर गए, इन लोगों ने उनको छेड़ा तो ऐसा हो गया, इनका बर्ताव अच्छा नहीं हुआ तब हमने ऐसे किया, हम करना तो नहीं चाहते थे लेकिन जो हो गया बाप माफ करें, ये माफी मांगने का जो एक तरीका है ये उचित नहीं। ब्रह्मा जी तो अच्छी तरह से अपने आप को मुक्त कंठ से अपराधी स्वीकार करके तब क्षमा के बाद कहना चाहते। तो ब्रह्मा जी में दैन्य आ गया और साथ ही आत्मग्लानी हुई। आत्मग्लानी हुई, एक भावों का प्रवाह बह चुका, बह चला। तो ब्रह्मा जी ने मानो कहा कि भगवान मैं भक्त हूं, मुझे आप कहीं भक्त न मान लें, ये मैं भी अगर भक्त होता तो ये अभिमान के साथ साथ मूर्खता भी कैसे करता, दोनों चीजें हुई। आप सर्वांतर यामी हैं, आप सब जानते हैं मेरी मूर्खता को, तो देखिए आप सर्व कारण कारण हैं, आप मेरे पिता हैं साक्षात, बड़ा ये कोई समझदारी की बात है और ये कोई शील है कि पिता अपने साथियों को लेकर के भोजन करने बैठा हो, अपने सहचरों के साथ है, पिताजी भोजन कर रहे हूं और उस समय उनके भोजन की व्यवस्था को बिगाड़ दे, उन सहचरों को वहां से हटा दे, उनकी पत्तलों को अस्त व्यस्त कर दे, भोजन जो समाहित चित्त से प्रसन्नता के साथ हर्ष के साथ कर रहे हैं उनके भोजन की विधि को बिगाड़ दे, तो इससे बढ़कर दुर्जन और मूर्ख कौन होगा। तो मेरी ये मूर्खता, फिर महाराज मैंने आपको समझा क्या, अपने को समझा क्या, जिसका अपरिच्छिन्न ऐश्वर्य है ऐसे आपके स्वरूप को, आपके ऐश्वर्य को, आपकी महिमा को, जिसका कहीं कोई अंत नहीं, जो आप आत्मा के आत्मा, समस्त माया के अधीश्वर भगवान शंकर भी जिनकी माया से विमूत, मैं तो मूर्ख हूं ही, ऐसे महामहिमान्वित स्वयं स्व महिमा स्थित सर्व कारण कारण सर्व नियंता सर्व मायापति सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर सर्वद्रष्टा, उनको मैं अपनी माया से बसने करने चला। तो मेरे मन में ये अभिमान जाग गया था उस समय कि मैंने अपनी माया से भगवान को वश में कर लिया, इस प्रकार का देव समाज में मेरा विज्ञापन हो जा। ब्रह्मा जी के मन में आया कि सारे देव समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो जाए कि मैं इतना महामहेश्वर कि मैंने भगवान को भी अपनी माया से मुक्त कर लिया, ये देव समाज के सामने अपने वैभव का विज्ञापन करने के लिए अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराने गया था मैं, इस मूर्ता की कोई सीमा है? शेष में नारी मनंतरादी परात्मी स्वयं माय मायनी माया अमृत मातम वैभवम यहम किया नहीं चुनवा चेगन मेरा वैभव। ये दिखाने गया मैं तो, अरे आग की आग से निकली हुई, प्रज्वलित अग्नि से निकली हुई चिंगारी आग की, उसकी क्या गणना है? और वो चिंगारी भी स्वयं आग को जलाने जाए, तो घास फूस पर चिंगारी पड़ जाए तो घास फूस जल जाता है अग्नि स्फुलिंग से, लेकिन घास फूस को जला देने में समर्थ अग्नि स्फुलिंग भी चाहे कि मैं आग को जला दूं, तो ये उसकी मूर्खता कुटिलता अभिमान, इसके सिवा और क्या है? तो महाराज देख हुई से दुष्टता मोरी, क्षमा कह लगे वर्णों तोरी, फिर भी आप मेरी ओर इस समय स्मित हास्य कर रहे हैं, देख रहे हैं करुणा की आंखों से, नजर से आपकी आंखों में मैं अभी क्रोध नहीं देख रहा, आपकी आंखों में वही स्नेह की धारा बह रही देख रहा हूं, तो कितने क्षमाशील आप हैं। तुम मालिक के इस नियंता पुनि माया पति हरि भगवंता, मैं मतमंद अल्प निज माया सो प्रभु को मैं आन दिखाया, ता करि तब ऐश्वर्य में देखन चहूं अनंत, किन देखूं मैं नूर मत तब महिमा को अंत। तो फिर भगवान से बोले तो महाराज अत क्षमस्वाचुत मेर जो भूमि जानत भूमि समारी में कहने लगे कि महाराज आप अच्युत हैं, अच्युत मनुष्य गिर जाए अपने स्वभाव से। गीता के अंत में भगवान ने पूछा अर्जुन से कि भाई तुम्हारे मोह का नाश हुआ कि नहीं, तुम प्रकृतस्थ हुए कि नहीं, तो अर्जुन ने स्वीकार किया, नष्टो मोह स्मृत लब्धा तत्प्रसादात मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनंतव। छह बात कही अर्जुन ने, नष्टो मोह मेरे मोह का नाश हो गया, मैं जो अपने को कुछ करने धरने वाला मान रहा था यूं करूंगा यूं नहीं करूंगा, मेरे मन में जो ये अभिमान था लगूंगा नहीं ये नहीं करूंगा ये करूंगा, भूल गया था कि मैं आपके हाथ का यंत्र हूं, ये स्मृति आ गई स्मृति लब्धा। तो मैं भी बड़ा अच्छा हुआ स्मृति आ गई, तो तुम्हारी साधना बड़ी ऊंची। नहीं नहीं महाराज तत्प्रसादात, ये जो मेरे अंदर मोह का नाश हुआ और स्मृति आई ये आपकी कृपा से आई। तो कहा कि तुमने जब साधना इतनी की तभी तो कृपा मिली ना, बोले नहीं नहीं अच्युत, भगवान का नाम लिया वहां पर अच्युत, मैं तो भूल गया मैंने छोड़ दिया आपको, मैं आपके हाथ का यंत्र हूं इस बात को मैंने अपनी कल्पना से निकाल लिया, परंतु आप अच्युत हैं, आप अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते गिरते नहीं, तो ये आपकी आपके स्वभाव से आप कृपा मुझे प्राप्त हुई, मैंने कृपा प्राप्त करने के लिए कोई साधन किया हो ऐसी बात नहीं, अपने स्वभाव से ही आपने अपनी कृपा का प्रकाश कर दिया मेरे सामने भगवान, इसलिए स्थितोस्मि, मैं जो भटक रहा था वो अपने स्थान पर स्थित हो गया, तो गत संदेह मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज आप अच्युत हैं, अच्युत हैं, मैंने अपराध किया और मैंने अपने को महामायावी माना, मैंने अपने बल का इतना मद धारण कर लिया कि मैं आपके पार्षदों को और आपको अपनी माया से मुक्त करने चला। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं दासत्व से च्युत हो गया, आपके चरणों में मैंने अरे जो स्वामी के चरणों का अपराध करे वो दास कहां रहा? दास तो वो भी नहीं है कि जिसका सेवा के अतिरिक्त अन्य को निज स्वार्थ रहता हो, वो भी दास नहीं। लेकिन जो स्वामी के विपरीत आचरण करे वो तो दासत्व से सर्वथा च्युत है ही। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तो आज के विपरीत आचरण किया तो मैं तो दासत्व से च्युत हो गया। पर महाराज आप कभी च्युत थोड़ी होने वाले हैं, आपका स्वभाव है क्षमा करना, आप दास के अपराधों की ओर नहीं देखते। आप जिसको अपना दास मान लेते हैं वो चाहे दासत्व से च्युत हो जाए पर आप अपने स्वामित्व से च्युत नहीं होते। स्वामी कौन? जो अपना काम करवा ले और कुछ देकर करका दे वही स्वामी? बोले ना, वो स्वामी नहीं। दास के सेवक के सारे योग क्षेम का भार जो स्वयं वहन करे आनंद पूर्वक बिना उसके कहे, वो स्वामी। तो प्रभु मैं च्युत हो गया। और एक बात है, संसार में कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसी वस्तु है, कौन ऐसी परिस्थिति है जो च्युत नहीं होती? एक बार जिस स्थान पर कोई है उससे वो च्युत होगा ही, ये संसार का स्वभाव है। किंतु आप कभी च्युत नहीं होते अपनी महिमा से, अपने गुण से। तुम्हारा अच्युत है आप, क्षमा आपका स्वाभाविक गुण है, तो आप क्षमा करिए, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करिए। फिर मन ने सोचा कि अपराध की क्षमा मांगना भी तो एक अपराध ही है, जो क्षमा मूर्ति है उनके सामने क्षमा की बात कहना ये दिखलाना मानो क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा की बात कहे बिना क्षमा शायद न करें। तो ब्रह्मा जी को संकोच हुआ, बोले महाराज क्या करे, तुच्छ जो होता है वो अपनी तुच्छता को लिए चलता है ना। तो जिसके हृदय में महान भावों का उदय नहीं होता उसकी वाणी में महान भाव कहां से आएगा? अरे अंदर जो होगा वही ना निकलेगा बाहर। तो आप महान से महान हैं और मैं तुच्छ से तुच्छ हूं, इसलिए मैंने जो अपराध किया और मैं आपके क्षमाशील स्वभाव का तिरस्कार करके क्षमा मांग रहा हूं, ये भी मेरी तुच्छता का ही उदाहरण है। तो इसकी ओर आप न देखें, मेरी तुच्छता हमारा स्वाभाविक है। मैं उत्पन्न हुआ रजोगुण से, मेरा काम रजोगुण, प्रवृत्ति रज का कार्य होता है, सृष्टि करता हूं ना मैं, तो ये रजोगुण का कार्य है। ब्रह्मा जी में रजोगुण लीला मानी गई, तो रजोगुण में चांचल्य होता है, लोभ पूर्ति आरंभ कर्म नाम समस्पृहा रजस्यता ने जायते। तो रजोगुण में चांचल्य होता ही है, इसीलिए मैंने इतनी खटपट की। में शांत समाहित होकर चुपचाप प्रात की लीला को देखता रहता तो ऐसा क्यों ये ऐसी दुर्घटना होती? पर मेरे लिए तो सुघटना ही हुई। लेकिन महाराज क्या है कि जो प्राकृत रजोगुण है ये भगवान को जो कहते हैं ना शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व इसी से वो प्राकृतिक साबित नहीं होता कि शुद्ध है, उसमें रजतम का मिश्रण नहीं है। ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं ये कभी भी शुद्ध नहीं रहते। जहाँ सत्व बढ़ा हुआ है वहां भी रजतम है, किसी रूप में न्यून हो करके है पर है, और जहाँ तम है वहां भी किसी अंश में सत्व है। तो मैं रजोगुणी ब्रह्मा कहते हैं, तो रजोगुणी जिसमें प्राकृत रजोगुण वर्तमान वो तमोगुण से रहित कैसे होगा? तो तमोगुण का कार्य है अज्ञता मूर्खता। तो महाराज ये तो मेरे स्वरूप की बात हुई है, मेरा अपराध भी क्या है? रजोगुणी में हूँ और रज के साथ तम रहता ही है, तम अंधेरा करता है, ज्ञान को ढक लेता है, ज्ञान के प्रकाश को त्रवृत कर देता है, और ये मेरी अज्ञता, और अज्ञता ही अज्ञता है, ये मरल प्रमाणित हो गया। इसीलिए तो मैं अपने को ब्रह्मांड का प्रभु मानने लगा, और अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में वर्तमान है उनको मैं माया से मूत करने चला, अपने को अलग बहुत बड़ा बलशाली मानकर। तुम्हारा ये रजोगुण का चांचल्य और तमोगुण का अज्ञान, इन दोनों से लिप्त हो गया मैं, इसीलिए मैं आठ आंखों वाला भी अंधा हो गया। ये रजोगुण की चंचलता ने और तमोगुण के अज्ञान ने मुझको अंधा बना दिया। इसीलिए आपको सामने देखते हुए भी आंखों के सामने प्रकट आपकी माधुर्य लीला देखते हुए भी, पर मैं आपके महात्म सिंधु का एक कण भी स्पर्श नहीं कर पाया। ये मेरे समान कौन अज्ञ? मेरी अज्ञता महाराज प्रमाणित हो चुकी। लेकिन प्रभु क्या कुपुत्र माँ का पुत्र नहीं होता है? कुपुत्र यदि है कोई तो माता पिता के लिए कुपुत्र चाहे है, पर है तो पुत्र ही ना। तो मेरे अपराध कितने ही, मैं हूँ आपका दास, मैं हूँ आपका, इसलिए क्षमा करनी ही पड़ेगी आपको। और ये विद्यापति ने कहा एक जगह, दिनैक दोष गुण लेश न पाओगी, जब तुम करब विचार तू जगन्नाथ जगत कहा ऐसे जग बाहिर छार। भगवान आप कितने महान हैं और मैं कितना क्षुद्र हूँ, मेरे में अगर आप गुण देखने जाएंगे तो कहीं गुण है ही नहीं, पर आप जगन्नाथ हैं और जगन्नाथ हैं तो जगत के नाथ हैं, तो क्या मैं क्षुद्र जगत से बाहर हूँ? मैं तो जगत में ही हूँ ना, और आप जगन्नाथ हैं, इसलिए मेरे नाथ तो आप हैं ही, तो इस नाथत्व से आप कैसे अलग होंगे भगवान? ये जो कुछ भी प्रपंच अप्रपंच जो कुछ है इसके सबके आप नाथ हैं, आप स्वामी हैं, आप नियंता स्वयं भगवान हैं। यद्यपि मेरे साथ आपकी तुलना नहीं, आपके अंशांश और प्रकृति के अंतर्यामी सारे प्रपंचों के अधिपति महाविष्णु हैं, उनके साथ भी आपकी तुलना नहीं होती। तो मैं तो क्या हूं, ये प्रकृति मोह तत्व अहंकार तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये आठ आवरणों से घिरा हुआ जो ब्रह्मांड रूपी घट है, उसमें अपने परिमाण से इस सारे तीन हाथ वाला मैं एक शुद्ध जीव हूं। तो और आप ये तो जैसे किसी खिड़की का कोई झरोखा हो उसमें से, और जैसे ये धूल कण सूर्य के ये परमाणु आते हों किरणों के, जैसे धूल से उड़ते हैं, इस प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड निरंतर धूल कण की भांति जिसमें जाते और आते रहते हैं। वो कहते हैं कि ये भगवान के जो श्वास है ना, जब श्वास बाहर निकलता है तो जगत का प्रकाश हो जाता है, और जब श्वास अंदर जाता है तो सारा ब्रह्मांड अंदर जा पहुंचता है। पुरुष नासा के जब ये बाहर आए साध युक्त में है, पुरुष नासा थे जो वे बाहर आए श्वास निश्वास सहित यह ब्रह्मांड प्रकाश पुनरपि श्वास जवे प्रवेश अंतरे श्वास सह ब्रह्मांड परिसे पुरुष शरीर गवाक्षर रंधरे जिन ऐसे जिन तसरे न चले पुरुष लोग गोपे ब्रह्मांड बिर जाए। कहते हैं कि ये आप जब श्वास लेते हैं तो श्वास के बाहर निकलने के साथ अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाते हैं, और जब आप श्वास को अंदर ले जाते हैं, जब श्वास भीतर प्रवेश करता है तो श्वास के साथ अनंत ब्रह्मांड आपके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे खिड़की के छेद से उससे बारी से त्रिश्रेणु चलते हैं, इसी प्रकार आपके प्रत्येक रोम विवर से अनंत ब्रह्मांडों का दिखना और न दिखना होता रहता है। तो महाराज मैं फिर क्या स्तमन करूं, क्या क्षमा मांगूं आपसे, आप सर्व कारण कारण हैं, आप नारायण हैं, मैं तो आपसे उत्पन्न नहीं हुआ। तो बिल्कुल जब नारायण से उत्पन्न हुए हो तो नारायण को मनाओ। ब्रह्मा जी को मन में ये बहम हो गया कहीं ये न कह दें कि तुम नारायण से उत्पन्न हुए हो, तो भाई नारायण को मनाओ। बोल नहीं महाराज, तो नारायण आप ही हैं। नारायणस्तम नहीं सर्वदेहिना, नारायणस्तम सर्वदेहिना आत्मा सधीशाखिल लोक साक्षी नारायणंगम नरभूजलायना तच्चाप सत्यम न तव यमो माया। ये श्रुतियां कहती हैं कि जब ये विश्व तीनों लोक प्रलयकालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित जो भगवान नारायण थे उनके नाभ से एक कमल निकला, उस और उस कमल से ब्रह्मा पैदा हुए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो कथन श्रुतियों का ये महाराज असत्य नहीं है, इस प्रकार मैं नारायण का पुत्र आपका पुत्र, और वो नारायण जो है वो दूसरे कोई नहीं, नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिना आत्मधीशा के लोक साक्षी नारायण नरभूजलायना सच्चा सत्यम न तव यो माया। ये नारायण आप ही हैं, दूसरे कोई नहीं, सारे जीवों के आत्मा आप हैं, इसलिए आप नारायण। नार माने जीव, अयन आश्रय, समस्त जीवों के आश्रय, इसलिए आप नारायण। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर नार जीव अयन प्रवर्तक,
इसलिए आप नारायण, आप समस्त लोगों के साक्षी नार जीव और अयन उनका स्थान निवास स्थान आप सबके कारण, इसलिए आप नारायण। तो और जो वैसे जो नारायण है वो भी आपके अंश ही हैं सब। तो ये सब आपकी लीला का विलास है भगवान। यदि आपका विराट स्वरूप ये जल में था तो मैंने जल में उसको पाया क्यों नहीं? 100 बरस तक मैं उसे ढूंढता रहा उस कमलनाल के मार्ग से, गया मैं भीतर जहां से कमलनाल पैदा हुई उससे मैं गया, और 100 वर्ष तक देवताओं की आयु से मैं ढूंढता रहा पर मुझे आप दिखाई नहीं दिए। फिर जब मैंने मंत्र जाप किया, तपस्या की, आपकी आज्ञा अनुसार, तब मुझे हृदय में आपका दर्शन हुए और फिर आप छिप गए। तो वो जल भी आपके अंदर, मैं भी आपके अंदर। तो प्रभु ये सब आपकी लीला है, आप माया के विनाश करने वाले हैं, सर्व माया के अधिपति हैं। अरे औरों की बात तो छोड़िए, अभी अभी उन्होंने आपने अपनी माता क्या दिखाया था? अत्र माया धमनावतार है सत्यपंतस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चान्तजठरे जननीया माया त्वमेव प्रकटीकृतं च। माया माने ऐश्वर्य। क्योंकि अभी अभी आपने इसी अवतार में इस बाहर देखने वाले अनंत ब्रह्मांड को और अपने अंदर दिखा दिया, अपने पेट में दिखा दिया। यशोदा मैया देख करके चकित हो गई, उसने सारा ब्रह्मांड देखा और आप भी देखे आए उसी में। तो महाराज ये क्या आपके ऐश्वर्य का विकास होने के सिवा और चीज थी? ये सारी की सारी आप, ये सारा आपका मिला ऐश्वर्य है। और वो बात भी जान दीजिए, उस दिन के बाद भी अभी क्या हुआ? अद्वैत दृश्य किम मन थे मायात्मा दर्शित एकोशी प्रथम तत्सा समस्ताया पावन कोशी चतुर्भुजा दखिल साकमय उपासदास पावन के जगंत भू तदमदम तदमितम ब्रह्मा द्वयम् शिष्यते। माता वाली बात भी जाने दीजिए, अभी हाल की बात, आज ही के बाद महाराज, दो दिन नहीं, क्या मेरे सामने आपने अपना ऐश्वर्य नहीं दिखलाया? तो पक्ष ये देखा गया आप अकेले रहे, और फिर सारे ग्वाल बाल बछड़े छाक छींके छड़ी जूते सिंगा बेणु कपड़े ये सब के सब आप बन गए। और उसके बाद मैंने देखा कि सब चतुर्भुज नारायण हो गए और मैं भी और सारे तत्व आपकी सेवा में विनियुक्त थे उस समय। अलग अलग उतनी ब्रह्मांड का रूप भी धारण कर लिया आपने। अब आप ये ब्रह्माद्वयम् शिष्य थे, ये अद्वितीय ब्रह्म के लिए रह गए। तो महाराज ये सारा का सारा आपके ऐश्वर्य का विकास है।